मेरे प्यारे युवा साथियों नमस्कार। आज 25 जुलाई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के लिए मैंने जो विषय चुना है, इनफैक्ट आज मैं एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपसे बात करने नहीं जा रहा हूं। आज मैं बात करूंगा हमारे निवर्तमान राष्ट्रपति जी का जो विदाई संबोधन है उस पर, राइट। तो इससे पहले कि मैं उनकी बात शुरू करूं मुख्य विषय के रूप में, न्यूज पर आता हूं और फिर न्यूज में भी जो मेरे पास बात करने के लिए आज जो सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं, इनफैक्ट सच पूछिए तो हमारे निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के विदाई संबोधन से ही निकाले गए कुछ तत्व, इसलिए मैं उस पर भी अभी बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, एक न्यूज जो अखबारों में छपी है वो जरूर महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और वो ये है कि हमारे जो अंतरिक्ष विज्ञानी UR राव जी रहे हैं वो नहीं रहे। मैं आप सब की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस राष्ट्र के हम सब नागरिकों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। दोस्तों, इस तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं वो किसी परिवार तक सीमित नहीं रहते, इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। सच पूछे तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वसुधैव कुटुंबकम होता है, राष्ट्र भी नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो धरती होती है वो उनका परिवार होता है और उनका जो योगदान होता है मानव जाति के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए वो इतना अद्भुत होता है कि शब्दों से उसे बयां किया ही नहीं जा सकता। और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जो हमारे यहां से जो आर्यभट्ट प्रक्षेपित किए गए, उनके डिजाइन बनाने में और उनके प्रक्षेपण की पूरी योजना का जो नेतृत्व किया था UR राव साहब ने किया था, और हमारे देश को उन्होंने इस लायक बनाया कि आज हम उपग्रह अपने बना रहे हैं और बहुत ही एडवांस्ड उपग्रह बना रहे हैं। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। तो मित्रों, न्यूज के रूप में तो बस इतना ही है। अब मैं आता हूं सच पूछिए तो मुख्य विषय पर ही। फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम कि आपने यह संबोधन सुना या नहीं सुना। अगर नहीं सुना हो तो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि प्लीज एक बार आप उसे सुने। मैं इसलिए नहीं सुनने को कह रहा हूं कि आप इससे सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर लेंगे, सीधे सीधे आपको पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशन या देश की समस्याओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मैं इसलिए इस को सुनने को कह रहा हूं कि आपको इसमें ढेर सारे ऐसे तत्व मिलेंगे, ऐसी बातें मिलेंगी जो अन्यथा आपको सुनने जानने को नहीं मिलेंगी। तो वो क्या है मित्रों, मैंने बहुत से संबोधन इस तरह के सुने हैं, बहुत से सुने हैं। नो डाउट कि उनमें बहुत अच्छे भी होते हैं, संबोधन बहुत अच्छे भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन यह संबोधन मुझे सर्वोत्तम संबोधन लगा, सर्वोत्तम मैंने जो अब तक सुना है। मैं है ना, मैं अपनी सीमाओं को जानता हूं, मैं बहुत ज्यादा मैं नहीं सुना है, लेकिन जो मैंने सुना है उसमें से एक सर्वोत्तम में से यह संबोधन एक था। जब मैं सर्वोत्तम की बात कर रहा हूं तो हर दृष्टि से, वो दृष्टियां क्या है, भाषा। अब भाषा देखिए कितनी प्रांजल भाषा है। प्रांजल शब्द पता नहीं अब इसका अर्थ आप समझ पाते होंगे या नहीं समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, प्रांजल का मतलब होता है जैसे एक पानी होता है ना, एक बहुत ही साफ सुथरा निर्मल पानी, एकदम निर्मल पानी, और वह एक ऐसी नदी में बह रहा है जिसके नीचे सफेद काले रंग के गोल गोल चिकने पत्थर पड़े हुए हैं और उन पत्थरों पर से वो पानी बह रहा है, कलकल हल्की आवाज करता हुआ वो पानी बह रहा है जिसकी कोई बाधा नहीं, और उस पानी से आप जमीन की तली को बड़े आराम से झांक कर देख सकते हैं कि वहां मछलियां तैर रही हैं या वहां हल्की हल्की काइयां धीरे धीरे डोल रही हैं, क्या हो रहा है। इसे कहते हैं प्रांजल भाषा, जो धीरे धीरे बहती है, आपको एक अपने आगोश में ले लेती है और जिसका इम्पैक्ट आपके दिल और दिमाग पर ऐसा पड़ता है मानो कि आपने गंगा स्नान किया हो। मतलब मेरे ऊपर तो कम से कम इसी तरह का प्रभाव रहा है, तो मैं अपने अनुभव की बात आपसे कर रहा हूं। भाषा की दृष्टि से कंपोजिशन आप देखिए कि संरचना, वाक्यों की संरचना देखिए कि जो शब्द चुने गए हैं कितने परफेक्ट वर्ड्स हैं, और केवल ये नहीं कि परफेक्ट वर्ड्स ही चुने गए हैं बल्कि साथ ही साथ उनको जहां और जिस तरीके से रखा गया है ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई कसीदेकार जो साड़ियों में जरियों जरी का जो काम करते हैं और एक एक सलमा सितारे उठा उठा करके अपने हाथ से उसे पिरोते हैं, इस तरह से शब्दों की बनावट रखी गई थी, शब्दों का स्थान रखा गया था। और तीसरा है मित्रों विचार, उसे जो विचार व्यक्त होते हैं यानी कि उसकी जो दर्शन है, उसका जो दर्शन है, उसकी जो फिलॉसफी है वो अद्भुत है, बहुत ही व्यापक और साथ ही साथ बहुत गहरी, जिसे हम कहते हैं सार रूप में कहना। सार का मतलब संक्षिप्त रूप में नहीं, सार का मतलब है कि बिल्कुल कोर की बातें करना, बहुत ही परफेक्ट तरीके से अपनी बातों को रखना, फिलॉसफी। और फिर रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, रेंज ऑफ फिलॉसफी, रेंज ऑफ फिलॉसफी कहने का मतलब है कि आपको उसमें ढेर सारे क्षेत्र मिलेंगे। ये नहीं कि अगर वो निवर्तमान हो रहे हैं और उनका तो पूरा का पूरा कैरियर देखिए पॉलिटिकल कैरियर रहा है ना, राजनेता के रूप में रहे हैं और बहुत ही सम्मानित राजनेता के रूप में रहे, बहुत ही मेच्योर्ड राजनेता के रूप में रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक राजनेता जनरली यही होता है कि वो पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, है ना, अपने देश की हमारी क्या स्थितियां रही और क्या होनी चाहिए, इस तरह की बात करेंगे। लेकिन उनकी जब आप, उनके जब आप संबोधन का विश्लेषण करेंगे तो आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी, उसमें देश की अर्थव्यवस्था भी मिलेगी, राजनीति और संविधान तो मिलेगा ही, लोग भी मिलेंगे, सामाजिक स्थितियां भी मिलेंगी, उसका सांस्कृतिक पक्ष भी मिलेगा, भारतीय इतिहास और दर्शन भी आपको दिखाई देगा, ढेर सारे रेंज को वो समाहित करके चलते हैं, ढेर सारे रेंज को। इसलिए मैंने कहा कि मुझे यह जो उनका संबोधन था वो बहुत अद्भुत लगा, एक ट्रेजरर की तरह, एक खजाने की तरह लगा, जो नो डाउट कि एक उस तरह से तो इतिहास में दर्ज होगा ही, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की चेतना में भी मुझे लगता है कि वह इसी तरह से डेफिनेटली दर्ज हो गया होगा। दोस्तों अब आइए मैं कुछ उसमें से तत्व आपके सामने रखता हूं और उसमें से जितना भी वक्त होगा हम दो चार पर बात करेंगे। उन्होंने बहुलतावाद शब्द का प्रयोग किया जिसे प्लुरलिज्म कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने सहिष्णुता शब्द का प्रयोग किया, सहिष्णुता के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं ये रटे रटाए स्टूडेंट्स इन्हें पैदा नहीं करने, इन्हें इनोवेटिव स्टूडेंट पैदा करने हैं, ऐसे स्टूडेंट पैदा करने हैं जिनके दिमाग में नए नए तथ्य शामिल हो, नए नए तथ्य इमर्ज हो, केवल शामिल ही नहीं हो। इसके साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रणब मुखर्जी जी के बारे में जो बात कही न्यूज में आपने सुना, उसमें ये बात थी कि जो सबसे बड़ी बात थी कि ये इतने बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे, ऐसे पदों पर रहे जो निर्णायक थे, जिसके बारे में निर्णय लिया जाता है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत मैंने ये देखी कि अपने 3 साल के अनुभव में कि जो भी सरकार के निर्णय रहे हैं उन निर्णयों का मूल्यांकन उन्होंने अतीत के तराजू से नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात थी, मतलब रियल सेंस में पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर, यानी कि जो वर्तमान की आवश्यकताएं थी उसी के आधार पर, उसी पैरामीटर्स पर ही उन्होंने सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों का मूल्यांकन किया, जो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आदमी हमेशा अपने अतीत को ढोकर चलता है, अतीत के बोझ से वो अपने चेतना को मुक्त नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने किया। ये बहुत बड़ी बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनसे कही, और फिर आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने वित्तीय समावेश की बात तो कही ही। तो मित्रों यहां मैं खासकर थोड़ा सा ज्यादा वक्त देना चाहूंगा उनके बहुलतावाद और सहिष्णुता को। ये जो प्लुरलिज्म है, सामान्य तौर पर आपने इसके बारे में खूब सुना है, खूब पढ़ा भी है, खूब कहा भी होगा और निबंध भी आपने लिखे होंगे। बहुलतावाद का मतलब है कि भारत विविधताओं का देश है, है ना, शुरू से हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते भी हैं कि हमारे यहां विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों वाले लोग आए, धर्म के लोग आए, भारत में आए, भारत ने उन्हें जगह दी, अपने गोद में बसाया, वो यहां फले फूले और इसके बाद भारत की ही संस्कृति में समाहित हो गए। यह है भारत की बहुलतावाद। हम सिंगुलर वाले नहीं हैं, न तो हम एक धर्म को मानते हैं, हमारा संविधान भी धर्मनिरपेक्ष है, मतलब कम से कम राष्ट्रीय धर्म तो नहीं है हिंदू, है ना, जैसा कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय धर्म है वो इस्लाम है, और भी दूसरे देशों के हैं, लेकिन हमारा नहीं है। हम तो धर्म निरपेक्ष हैं। व्यक्ति के तौर पर मेरा धर्म हिंदू हो सकता है, आपका इस्लाम हो सकता है, किसी का ईसाई हो सकता है, ये व्यक्तिगत, कोई सिख हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। अगर राष्ट्रीय धर्म है तो वो धर्म निरपेक्षता है, और अगर कोई राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ है तो वो हमारा संविधान है। और मित्रों, ये जो संरचना हमारी मॉडर्न है, ये हमारी आधुनिकतम संरचना है। ये जो संविधान है ये तो 1950 में एक्सेप्ट हुआ है, 2.5-3 साल इसको बनाने में लगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो संविधान हमारा जो बना है, जो वास्तव में बहुलवादी संविधान है, ये संविधान क्या केवल मॉडर्न जो पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया है ना, हमारे संविधान सभा में बहुत पढ़े लिखे लोग थे, आप देखिए कि उसमें लॉयर्स थे, बैरिस्टर्स थे जो इंग्लैंड से पढ़ करके आते थे, इंग्लैंड में रहने के दौरान वो डेमोक्रेसी को देखते थे, वो वहां के सोशल स्ट्रक्चर को देखते थे कि वहां के लोगों को कितनी फ्रीडम है, किस तरीके से वो रह रहे हैं, तो उनकी चेतना में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आ जाता था। तो ये लोग आए और संविधान सभा में बैठ करके इन्होंने हमारे संविधान की रचना की। तो आपको क्या लगता है कि ये इसलिए की क्योंकि ये इंग्लैंड गए थे और इनको मॉडर्न सिविलाइजेशन मालूम था, लोकतंत्र की परिभाषा वहां से सीख करके आए थे, क्योंकि सामान्यतया ये प्रश्न उठाया जाता है। लेकिन मित्रों, मुझे लगता है कि वही एक कारण नहीं था। नो डाउट उसने उनको वहां जब वो गए तो उन्होंने एक आउटलुक उसका उनके दृष्टिकोण को विकसित किया, उन्हें लगा कि अरे एक धरती पर एक ऐसा भी राष्ट्र है और ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन भारत तो शुरू से ही, आज से नहीं, अब भारतीय इतिहास के पन्नों को उल्टा करके देखिए, शुरू से ही ऐसा रहा है, इसी तरह का रहा है। इसने कभी कोई भेदभाव किया ही नहीं। जिस जो वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, ये हमने तो पूरी धरती को अपना परिवार शब्द नहीं कहा है, कुटुंब शब्द कहा है। कुटुंब शब्द और परिवार शब्द में एक फर्क होता है मित्रों। परिवार तो थोड़ा सा छोटा हो सकता है लेकिन कुटुंब तो बहुत बड़ा होता है। और दूसरी चीज है कि जो कुटुंब है वो कुटुंब जो बड़े क्लोज लोगों के लिए हम कुटुंब कहते हैं, तो कुटुंब जो है वो छोटा हो सकता है, सॉरी परिवार एक बड़ा रेंज हो सकता है, लेकिन यहां कुटुंब छोटे सेंस में नहीं कहा गया है। उसमें ये कहा गया है कि पृथ्वी के जितने भी लोग हैं वो हमारे उतने ही निकट हैं, दिल और दिमाग के निकट हैं जितना हमारे कुटुंब के लोग होते हैं। कुटुंब के लोग यानी कि माता पिता भाई बहन, ये कुटुंब में आते हैं। परिवार में तो फिर और भी, फिर जो दूसरी जो आउटर पेरिफेरी है, जो बाहर की परिधि है, वो भी शामिल हो जाते हैं। तो ये हमारे इतने नियरेस्ट रहे यानी कि कोई भेदभाव है ही नहीं। और दोस्तों, इस बात का ये ध्यान रखिएगा कि भारत की जो बहुलतावाद है, जो विविधता है, जो इतनी ज्यादा सहिष्णुता है, सहन करने की शक्ति है, इसका जो प्रवेश द्वार है वो बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। कोई भी घुस सकता है, कितने लोग भी घुस सकते हैं, विशाल प्रवेश द्वार। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण प्रकृति का भी रहा है। देखिए, जो भारत है, भारत इसको पूरे के पूरे जो भारत है और इधर साउथ ईस्ट एशिया का जो हिस्सा है, इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा बौद्धिक रूप में सोचे तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कि कॉन्टिनेंट आप जानते हैं, कॉन्टिनेंट का मतलब है महाद्वीप, और एक महाद्वीप में कितने राष्ट्र देश होते हैं, यूरोप में कितने देश है, एशिया एक महाद्वीप है जिसमें एक भारत देश है, तो इसमें कितने सारे देश है। लेकिन इसके सामने सब कॉन्टिनेंट लगा दिया कि कॉन्टिनेंट तो ठीक है नहीं है, लेकिन कॉन्टिनेंट जैसा तो है उपमहाद्वीप। यानी कि एक कॉन्टिनेंट में जो प्राकृतिक वैविध्य हो सकते हैं, होते हैं, वो सारा का सारा वैविध्य भारत में उपस्थित है, आप देख रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत एक ऐसा अद्भुत राष्ट्र है, एक ऐसा अद्भुत राष्ट्र है जिसमें महाद्वीप की सारी विशेषताएं हैं। आपके पास क्या नहीं है? आपके पास उष्ण कटिबंध है, आपके पास विषुवत रेखीय प्रदेश है, अगर आप अंडमान निकोबार को देख लें तो आपके पास उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, प्योर उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, अगर आप साउथ इंडिया को देख लें तो। इसके बाद आपके पास शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, अगर आप कर्क रेखा से ऊपर चले जाएं तो उत्तर भारत पूरा शीतोष्ण कटिबंध में है। इसके बाद अगर आप हिमालय वाले रेंज पर चले जाएं तो आपके पास शीत कटिबंध भी है, लेकिन यहीं तक नहीं, आपके पास मरुस्थल भी है। हमारा पूरा का पूरा साउथ वाला हिस्सा देखिए, तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो हमारे पास समुद्र भी है, हमारे पास नदियां फैली हुई हैं, जैसे कि हमारे शरीर में नसें फैली होती हैं, इस तरह से पूरे के पूरे भारत की धरती पर नदियों का संजाल फैला हुआ है। चूंकि प्रकृति ऐसी है, तो वनस्पतियां भी वैसी हैं, क्योंकि जलवायु ऐसी है तो पता लगा कि जीव जंतु भी वैसे हैं। तो प्रकृति ने ही एक तरीके से कह लीजिए कि हिंदुस्तान के ऊपर उदारता का खजाना लुटाया है, एक अद्भुत राष्ट्र बना दिया है, एक मॉडल राष्ट्र कि मैं तुम्हें उदारता का वरदान देती हूं। प्रकृति कह रही है मैं तुम्हें उदारता का वरदान देती हूं, तुम इस दुनिया को उदारता का दर्शन प्रदान करो, उदारता की संस्कृति प्रदान करो, और यह अपने आचरण के द्वारा करो। और हिंदुस्तान ने वैसा किया है, और हमारा संविधान आधुनिकता के संदर्भ में उसका जीता जागता प्रमाण है, जो कि हमने बड़े सोच समझ कर किया है। यानी कि यह हमसे अचानक हो गया, यह तो हमने बड़ा सोच समझ कर किया है। तो मित्रों, यह है बहुलतावाद जो भारत को प्रकृति से मिला है, और प्रकृति एक तरीके से कह दीजिए हमारे पूरी की पूरे जो एक मानसिक प्रकृति है, एक तो भौतिक प्रकृति हो गई जिसमें हम नदी पहाड़ पेड़ पर्वत देख रहे हैं, और दूसरी हमारी मानसिक संरचना हो गई जिसे हम अपनी मनुष्य की प्रकृति कहेंगे, इन दोनों के साथ मैच करता है। और जब तक इन दोनों के साथ मैच होता रहेगा, आप याद रखें कि हिंदुस्तान सनातन बनता चला जाएगा, मतलब कभी पुरातन नहीं पड़ेगा, पुराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति तो कभी पुरानी नहीं पड़ती है, प्रकृति तो हमेशा नई ही होती है। तो जो प्रकृति के सामंजस्य में रहेगा वो हमेशा नया ही रहेगा। इसीलिए भारत के जो दर्शन है, जो भारत की संस्कृति है, वो कभी पुरानी नहीं पड़ती, वो लगातार जैसे कि सांप अपनी केचुली, पुरानी केचुली हटाकर लगातार नई केचुली धारण करता रहता है, भारत का भी पूरा का पूरा सांस्कृतिक और सामाजिक और जो सभ्यता का जो विकास हुआ है, आप देखिए कि कैसे लगता है कि हमने पुरानी केचुली निकाल दी और हमने फिर से नई केचुली धारण कर लिया। तो मैं जो सांप की उपमा दे रहा हूं उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं भारत को सांप कह रहा हूं, ऐसी गलत फहमी मत पालिएगा मित्रों। मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरीके से इसके बाद भी वो जीवित है और बड़े आराम से नवीनता के साथ इस धरती पर भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। तो मित्रों, मैंने बहुलतावाद और सहिष्णुता को लेकर के ये आपके साथ आज इस पर थोड़ी सी बात की है, और मैंने जानबूझकर बात की है ताकि आप हमारे संविधान को नए नजरिए से देख सकें, हमारी संस्कृति के प्रति आपका एक प्राकृतिक दृष्टिकोण विकसित हो सके, और यह दृष्टिकोण आपके विश्लेषण में बेहद काम आएगा, और निबंध के क्षेत्र में तो इसकी सबसे बड़ी भूमिका होगी ही। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। बात करने के लिए कुछ विशेष नहीं है, मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। अंतिम चरण में मैं स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवम्बर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन चार साथियों के नाम हैं दुर्गा राम जांगीर जो बाड़मेर राजस्थान से हैं, अंजनी कुमार ओझा आप अंबा राजस्थान से हैं, मोहनलाल आप धौलपुर राजस्थान से हैं, और शैलेश कुमार मिश्रा आप रीवा मध्य प्रदेश से हैं। तो आप चारों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।